If you've been hurt by a truck, you can call Colombo Law 24/7 and we'll be there to make sure you're taken care of. When someone is hurt by a truck, Colombo Law is the law firm people call to get answers. Hurt by a truck? Call Colombo Law.
You're listening to the Quince Podcast.
A powerful Swami and political leader was accused of rape and intimidation. What followed is endless power play with counter-allegations of extortion and blackmail. You are listening to a special podcast on The Quint, and I am your host, Zija Sherwani. Today, I will try to unravel a case which has multiple layers, many characters, and a lot of unanswered questions. All in a small town in Uttar Pradesh, Shahjahanpur. Yes, I am talking about the sexual assault case involving former Union Minister and BJP leader, Swami Chinmayanand, who made headlines in August 2019 after the 23-year-old law student who accused him went missing. Ironically, as the case grabbed the nation's attention and was talked about all across, Shahjahanpur, Chinmayanand's stronghold, fell silent. Later during this podcast, I will explain how Chinmayanand and Shahjahanpur are deeply connected. But first, let me give you a glimpse into how this case left the town unable to decide who is at fault.
अपने नॉलेज पर करिए, ये तरीका तो गलत हुआ ना, पावर को पाने का, पोजीशन को पाने का, तो आई थिंक शी इज रॉन्ग।
जिस हालत में वो मालिश करवा रहे हैं, चाहे वो किसी परिस्थिति में हुआ, वो गलत तो है ही। रही लड़की मामला, लड़की भी एक उस रंगदारी के या किसी के उसमें आके पैसे को लेके करी रही थी, इससे साफ जाहिर हो रहा है। कुल मिलाके दोनों लोग गलत हैं।
जैसे कि अगर उस लड़की के साथ हुआ ऐसा, तो हर लड़की के अंदर डर बैठ जाएगा कि कोई भी आगे कदम नहीं उठा सकती है। अगर वो लड़की अगर चुप रहती ना, तो सारे उसके ऊपर अत्याचार होते ही रहते।
Now let's dive into the case. 24th August, a law student studying in Shahjahanpur's SS Law College went missing after she posted a video on Facebook. In the video, she alleged, and I quote, a Sant Samaj leader was threatening to kill her and has ruined many other girls' life. She sought Prime Minister Narendra Modi and UP Chief Minister Yogi Adityanath's help.
SS लॉ कॉलेज से LLM कर रही हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है।
The very next day, her father accused Swami Chinmayanand of having kidnapped her.
सभी प्रकार की आशंका लग रही है मन में। ये स्वामी चिन्मयानंद के द्वारा है, राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी है, स्वामी जी की, चिन्मयानंद की, और ये प्रभाव तो रखते ही है। कोई भी अप्रिय घटना घटवा सकते हैं बच्चों के साथ, हमारे साथ।
It's been a few months since the video made rounds. Today our big question is, how did the woman who accused Chinmayanand of rape land up in the same jail as him? Yes, the complainant and Chinmayanand were both put behind bars, 5 days apart from each other in September. Before we try to answer that question, let me tell you a little more about Chinmayanand and his relationship with Shahjahanpur. Easily the most influential person in Shahjahanpur, Swami Chinmayanand is a former BJP MP and was a union minister in the third Vajpayee government. He has an ashram called Mumukshu Ashram in Shahjahanpur. Further, he established 3 educational institutes and heads the managing committee of Swami Sukhdevanand Postgraduate College, where the woman who accused him of sexual assault studied. Most of Shahjahanpur's youth is enrolled at these institutes, and this is why locals are still reeling under the case's impact. What goes in these institutes? Who are the people involved? Locals are afraid someone from their family will become a target if they speak out. Here's what two students of SS Law postgraduate college said.
ये लड़की अगर अंदर है उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर उसने ऐसा कुछ गलत किया है तो लड़की गई भी है अंदर, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा को सामने लाया, बहुत हमें खुशी इस बात की।
अच्छा, अभी आप लोग क्योंकि इस शहर के रहने वाले हैं, आपके हिसाब से लोगों की क्या सोच है, लोग क्या सोच
है? लोगों की सोच है कि बाबा बहुत गलत है। अच्छा। जो भी किया है बहुत गलत किया है, ऐसे बाबा को हम शाहजहांपुर नहीं रहने देंगे। लेकिन खुल के कोई उनसे विरोध नहीं लेना चाहता, जब क्योंकि बाबा जो है बाहुबली बाबा, इससे पहले 2011 में एक अंदर ही मतलब उनकी शिष्या थी, उन्होंने रेप का आरोप बाबा के ऊपर लगाया था और वो कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बाबा का कुछ हुआ नहीं। जो लोग यहाँ पढ़ते हैं, जो लोग कॉलेज से टच हैं, सबको जानकारी है।
अच्छा।
लेकिन कोई खुल के कुछ नहीं कहना चाहता कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे घर पैदा हों, पड़ोसी घर पैदा हो जाए। जानकारी है कि यहाँ बाबा आके जो भी आते हैं, बाबा के अनुयायी आते हैं, संपर्क उससे करते हैं, फिर अगर वगैरह जो कुछ लेके जाते हैं, बस सबको जानकारी होती है, लेकिन बोलना कोई कुछ नहीं चाहता।
और कॉलेज वगैरह में सबको ये वाली बात इन्फॉर्मेशन है कि बाबा
पूरा रैकेट चल रहा है,
पूरा
मतलब नीचे से ऊपर तक सब लोग इन्वॉल्व हैं।
I visited Shahjahanpur with the aim to understand the impact the case has had on townsfolk, especially on women. Most people I spoke with were gripped with fear, so much so that they hesitated to voice their opinions. Initially, I didn't quite understand their fear until I snuck to the back gate of the college to speak to the students you heard earlier. They told me Chinmayanand's informant had been following us on a bike. I was asked to wrap up my interview quickly or else I'd get into trouble. A local journalist who actually broke the story and was there to help me even got a call from the college principal, who was furious we were talking to students. When I asked the journalist how the principal found about us, he told me they had a surveillance camera. That's when the gravity of the situation hit me and I understood why nobody had dared to speak out. Chinmayanand is said to be close with UP CM Adityanath. Last year, UP government withdrew a 7-year-old rape and kidnapping case against Swami Chinmayanand, which had been filed by a disciple of his in 2011.
बच्चों को पढ़ने तो भेजेंगे, लेकिन ये के थोड़ा अब हाँ
अपनी फैमिली को लेकर, उनकी रिस्पेक्ट को लेकर बहुत लड़कियां आवाज नहीं भी उठाती हैं, लेकिन उठानी चाहिए। पावर को लेकर कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
लड़कियां बोलेंगी तभी पब्लिक जागरूक होगी, तभी लड़कियां लोग आगे निकल पाएंगी, वरना वो डर के कोने में घुस जाएंगी, आगे नहीं निकल पाएंगी।
अगर उसने ये कदम उठाया तो उसने अच्छा ही किया है, हर लड़कियों को इस तरह से करना चाहिए। और जैसे वो पावरफुल है तो पावरफुल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें न्याय चाहिए तो मतलब चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा।
Almost a week after the law student went missing, she was found with a male friend, Sanjay, in Dausa, Rajasthan. The police said she wasn't kidnapped and they brought the two to Delhi. They were presented before the Supreme Court and the court ordered a probe in the case and directed UP police to form an SIT. Remember, in her Facebook video that was posted before she went missing, she had accused Chinmayanand without naming him of filming her while she was bathing and later blackmailing her. After she was found, the law student filed FIR for rape at Delhi's Lodi Garden police station.
FIR दिल्ली में कर चुकी हूँ, उसका मुकदमा अभी यूपी में नहीं लिखा गया है, शाहजहांपुर यूपी में नहीं लिखा गया है। 376 मेरी कायम नहीं करी जा रही है यहाँ शाहजहांपुर के अंदर, यूपी पुलिस से खतरा है, बस इसलिए मुझे दिल्ली में 0 FIR करवानी पड़ी। खुद स्वामी चिन्मयानंद के शब्द हैं कि शाहजहांपुर मेरा लॉ कॉलेज, हर साल कितने वकील यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, कानून व्यवस्था पूरी उनकी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे शाहजहांपुर और यूपी, बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा आप लोग यहाँ पे 376 का मुकदमा प्लीज लिखवाइए।
She said she had proof to expose Chinmayanand. She had been filming him with the spy camera in her spectacles. But who tried to extort Chinmayanand? On 25th August, while the girl was missing, Chinmayanand's lawyer had filed a case for extortion. The lawyer alleged Chinmayanand received a WhatsApp message which threatened to ruin him and his ashram's image lest he coughed up rupees 5 crore. He named a Sachin who had visited Chinmayanand earlier in August and tried to blackmail him with some videos.
22 अगस्त को स्वामी चिन्मयान जी के मोबाइल नंबर पे एक अननोन नंबर से धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज आता है तो 24 अगस्त को सुबह 11 बजे लगभग मैंने एक लिखित में एप्लीकेशन थाना कोतवाली में दी और मैंने कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए।
चिन्मयानंद लॉयर इज हिज स्पोक्सपर्सन एज वेल। ही शोड मी टू एफआईआरस लॉज्ड अगेंस्ट द लॉ स्टूडेंट्स फादर एंड एन एफआईआर लॉज्ड बाय हर मदर अगेंस्ट हर फादर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस।
ज्यादा अनुनय विनय करने पर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा हॉस्टल का रिकमेंडेशन किया गया और इनको हॉस्टल अलॉट किया गया। हॉस्टल में कुछ दिन इनकी माँ भी रुकी छात्रा की, क्यों उसके पति ने मार के जैसा उसने बताया कि मार घर से बाहर निकाल दिया, रहने कोई ठिकाना नहीं है। फिर उस छात्रा की माँ ने जिलाधिकारी शाहजहांपुर के यहाँ अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, उसकी सर्टिफाइड कापी है मेरे पास और उसमें जो एड्रेस जो अपना दिया है पता दिया है उसमें लिखा है ओबीसी छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल मुख्य शासन शाहजहांपुर, लड़की की मां का एड्रेस है।
10 सितंबर द केस बिकम्स मर्कियर। टू वीडियोस गो वायरल, वन ऑफ अ गर्ल मसाजिंग चिन्मयानंद एंड द अदर वेयर थ्री बॉयज एंड अ गर्ल डिस्कसिंग व्हाई इट वाज टू सून टू आस्क फॉर मनी। द बॉयज वर आइडेंटिफाइड एज संजय एंड विक्रम फ्रॉम शाहजहांपुर एंड सचिन फ्रॉम गाजियाबाद। Questions started being raised about the girl, some alleging that the massage in the video looked consensual and some even asked why she'd waited a year before exposing Swami.
आपने जो videos वगैरह देखे होंगे, आपने जो कुछ भी देखा हो उससे related जो कुछ भी लिखा है तो उसमें साफ साफ लग रहा है कि वो यही plan कर रही थी कि उसे किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा game plan करना है या कुछ कहना है और वो अपने ही plan में फंस गई, मतलब ऐसा दिख रहा है। बाकी मुझे इतना देखिए पता नहीं, मैं खुद एक लड़की हूं, मैं किसी के बारे में क्या कमेंट करूं।
Here's what the girls council had to say।
लड़की की सपोर्ट में 100% ला है, बलात्कार अगर हुआ है जैसा लड़की ने कहा है उसको समर्थन एसआईटी ने किया है। बाकी टेक्निकलिटीज की बात जो आर्गुमेंट्स सोसाइटी में चल रही है, सारे आर्गुमेंट्स सोसाइटी तय नहीं करेगी, जजेस तय करेंगे और जजेस ने उनको कंसीडर किया है जिसके परिणामतः यहाँ से जमानत खारिज हुई है। और किसी भी केस में न्यायालय को बहुत पावर होती है, उसके स्टेटमेंट्स की बहुत वैल्यू होती है, लिहाजा आप लोग अभी बिल्कुल अंतिम निर्णय पर ना पहुँचे, न्यायालय तक आने दें, मीडिया ट्रायल से बचें और हम लोगों को भी मीडिया ट्रायल और मीडिया प्रैक्टिस की तरफ ना ले जाएं। देखिए मुझे लगता है कानून हमेशा अपना काम करता है और इसमें भी कानून ने काम किया है। जितना बड़ा नाम होता है उतना ही वो पीछे से बहुत कुछ साथ लेके आता है, तो विगत वर्षों से वो साथ लेके आए होंगे तो किसी को बोलने में मुझे लगता कोई संकोच नहीं होगा और डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो किसकी क्या छवि है उसके साथ सारी चीज़ें समाज खुद में एक दर्पण है और वो चीज़ें क्लियर दिखने लगती।
Finally, on 20th September, Chinmayanand was arrested after he admitted to being present in the videos.
Directly स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो उसको लीड करते हैं और उन्होंने जब ये कहा कि मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं अपने कृत्य पे शर्मिंदा हूँ, this is more than enough.
But he wasn't arrested under Section 376. But under Section 376C, which deals with sexual intercourse with a woman by a person of authority or someone with whom she has a fiduciary relationship or a public servant or superintendent of a jail, remand home or women's or children's institution. On the same day, the three boys, Sanjay, Vikram and Sachin, were also arrested. Sanjay, the male friend with whom the complainant was found in Rajasthan. Allegedly, both Sanjay and Vikram are quite influential too. They controlled a few colleges and organized BJP events locally. They allegedly belong to Chinmayanand's inner circle. I met Sanjay's father, Akhand Kumar Singh, at his house in Bantra village, about 10 km from Shahjahanpur. He just said he wanted to be away from the mess made by his son.
इन्होंने पहले झगड़ा किया था तो उस टाइम हमने कहा था जो एक बार चलो तुम्हारी जबान करा लेंगे, दोबारा अगर तुमने कुछ किया हम नहीं कर तुम्हारे साथ नहीं दे पाएंगे कुछ, खुद बहुत परेशान है हम जो इधर चक्कर हम नहीं पड़ते कभी, आज तक हमारा जो रिकॉर्ड है कि हमारे हम पर कोई भी मुकदमा केस हम पर नहीं लगा है.
He told me Sanjay, Vikram and Sachin are cousins. I met Vikram's mother next.
चाचा का बेटा है संजय. हाँ तो उसका कुछ भी साथ दिया हो लेकिन उसका कोई दोष नहीं, ना उसे कोई लालच है ना कोई लालची कह सकता, और बीजेपी में काम भी करता था और शुरू से पढ़ाई कर रहा है.
On 25th September, the law student was arrested in the extortion case filed by Chinmayanand's lawyer. According to the SIT, she admitted to being present in the alleged extortion video and sending the messages to Chinmayanand.
Sachin, Vikram और Sanjay, इन तीनों के बारे में उन्होंने वेरीफाई किया, उनकी आवाज को पहचाना, यह भी बताया कि जिस गाड़ी में ये वार्तालाप हो रही है उस गाड़ी को भी इन्होंने बताया कि वो किसकी गाड़ी है, और स्वयं जो उनकी भी आवाज को उसने बताया कि हाँ ये वो खुद हैं, और ये सारे जो वहाँ पे उस गाड़ी में जो प्लानिंग की जा रही है रंगदारी के लिए और जो धमकी दी जा रही थी जो प्लानिंग हुई है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया. जो हम लोगों ने उनसे पूछताछ की थी उन्होंने सभी चीज़ को स्वीकार करके इस बात को कहा कि हाँ उनके द्वारा इन तीनों लड़कों के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध इन्होंने रंगदारी और धमकी का इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने किया था, और जो मैसेज स्वामी चिन्मयानंद को 22 तारीख को जो दी गई थी उसमें इन चारों का हाथ है.
For now, the alleged rape and the alleged extortion cases are in court. As people of Shahjahanpur wonder, who's supposed to check the amount of power one person wields over a place? How does one ensure the power isn't misused? And if it does, how does one speak out without the fear of dire consequences? Thank you for listening to the Quinn Special Podcast. You can check out my documentary on the same on the Quinn's website. You can find the link in the show notes. If you like listening to this podcast, then subscribe to the Quinn playlist on Apple, JioSaavn, Spotify, Google Podcasts, and for other podcasts, log on to the Quinn website and check out our podcast section. For any feedback, send an email to podcasts@thequinn.com.